एहेस्केल अध्याय 10 पद 1। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है उसमें नील मणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। फिर से परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन जैसा उसने कबार नदी पर देखा था। एहेस्केल अध्याय 10 पद 2 से लेकर 4 तक। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपने दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर छितरा दे। सो वो मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। जब वो पुरुष भीतर गया तब वे करूब भवन की दक्षिण ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवड़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वो आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। तुम कहते हो, ओह कैसा महान दृश्य, परंतु अति दुखदायी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हमसे दूर हो रही है। एहेस्केल अध्याय 10 पद 5 से लेकर 11 तक। और करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी, तब वो उनके बीच में जाकर एक पहिये के पास खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी और वो उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। तब मैंने देखा कि करूबों के पास 4 पहिये हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है और पहियों का रूप फिरोजा का सा है और उनका ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते हैं, जैसे एक पहिये के बीच दूसरा पहिया हो। चलने के समय वे अपनी चारों आलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं, वरन जिधर उनका सर रहता है वे उधर ही उसके पीछे चलते हैं और चलते समय वे मुड़ते नहीं। ये करूब संख्या में 4 थे। उनके पंख भीतर की ओर मुड़े 1 थे तथा दूसरे के पंखों का स्पर्श करते थे। उनका चलना सीधा सीधा था और वे अपने मुंह को मोड़ते नहीं थे। एहेस्केल अध्याय 10 पद 12 से लेकर 14 तक। और पीठ हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिये उनके हैं वे भी सबके सब चारों ओर आंखों से भरे हुए हैं। मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहा गया, अर्थात घुमाने वाले पहिये, और एक एक के 4-4 मुख थे। एक मुख तो करूब का सा था। अध्याय 1 में उसने कहा था कि उनका एक चेहरा बैल का था। इस समय वे ऊपर हैं और वो नीचे से उन्हें देख रहा है, इसलिए वो कहता है कि वे करूब कैसे दिखते थे। एहेस्केल अध्याय 10 पद 14 में आगे लिखा है, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उकाब पक्षी का सा। देखिए फिर वही 4 चेहरे हर दिशा में 1। एहेस्केल अध्याय 10 पद 15 से लेकर 19 तक। और करूब भूमि पर से उठ गए। ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे। और जब जब वे करूब चलते थे तब तब वे पहिए उनके पास पास चलते थे। और जब जब करूब पृथ्वी पर से उठने के लिए अपने पंख उठाते तब तब पहिए उनके पास से नहीं मुड़ते थे। जब वे खड़े होते तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे उठते तब ये भी उनके संग उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा इनमें भी रहती थी। यहोवा का तेज भवन की ढेवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया, और करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गया, और पहिए भी उनके संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए, और इसराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। वे भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए। एहेस्केल अध्याय 10 पद 20 से लेकर 22 तक। ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास इसराइल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे भी करूब है। हर एक के चार मुख और चार पंख और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे, और उनके मुखों का रूप वही है जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था, और उनके मुख ही क्या वरन उनकी सारी देह भी वैसी ही थी। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। यदि आप अलौकिक जीवधारी जैसे करूब को देखें जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा है, तो मानवीय भाषा की सीमा में उनका वर्णन करना कठिन होगा। एहेस्केल उनके रंग, आंखें, चेहरे आदि को मानवीय भाषा में समझने का भरसक प्रयास करता है। हमें तो उसका विवरण पैशाचिक सा प्रतीत होता है, क्योंकि उनका रंग, आंखें, चार चेहरे, चाल, रफ्तार, चमक आदि विस्मयकारी है। यहाँ एहेस्केल भाषा की सीमा में बंधा उन स्वार्गिक प्राणियों का वर्णन करता है जिन्हें उसने भी पहले कभी नहीं देखा था। यीशु ने निकोदिमस से कहा था, मैंने तुझे सांसारिक बातें बताई है और तू नहीं समझता है, तो तू स्वर्ग की बातों को कैसे समझेगा। जब सांसारिक बातों को समझाने में हमें कठिनाई होती है, तो स्वर्गिक बातों को हम कैसे समझ सकते हैं। ये वैसी ही समस्या है जैसी एक आदिवासी के सामने कंप्यूटर का वर्णन करने में सामने आएगी, क्योंकि वो तो ये भी नहीं जानता कि कीबोर्ड क्या है, तो वो कैसे उसके बारे में समझाएं। एहेस्केल की स्थिति ठीक ऐसे ही है। पौलुस भी स्वर्ग में उठाया गया था, परंतु वो बहुत होशियार निकला। उसने कहा, जो मैंने सुना उसका वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है, और उसने इस विषय को वहीं छोड़ दिया। उसने कहा कि शब्दों में उसका वर्णन करना अपराध होगा। जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तब उससे इस विषय पर शिकायत करूंगा कि उसे कुछ तो कहना था। उसने उसके वर्णन को अपराध कहा, क्योंकि उसका ज्यों का त्यों वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। अतः मानवीय भाषा में उसका वर्णन उसको सच्चाई से कम कर देगा। शब्दों में उसका वर्णन असंभव है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्ग की शब्दावली अलग ही होगी, जिससे कि हम स्वर्गिक वस्तुओं का वर्णन करने में सक्षम हो। अतः एहेस्केल ने अपने युग की तकनीक और भाषा के सीमित ज्ञान के उपरांत भी उन आत्मिक जीवों और घटनाओं का यथासंभव वर्णन किया है। एहेस्केल कहता है कि उनके पंख थे, तो आप सोचेंगे कि चिड़िया के से पंख होंगे। मैं सोचूंगा जेट विमान के से पंख। अतः हम नहीं जानते कि पंख से उसका तात्पर्य क्या था। उनके चलने की गड़गड़ाहट आज जेट विमान की सी गड़गड़ाहट थी क्या? यदि आज के युग में एहेस्केल दर्शन देखता, तो इन स्वर्गिक जीवों का जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर रहते हैं, वर्णन करने में उसकी शब्दावली भिन्न होती। इस वर्णन की तुलना यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 4 में दिए गए वर्णन से कीजिए। आप यूहन्ना के इस वर्णन को कंटस्थ कर लीजिए, क्योंकि उसने सबसे पहले परमेश्वर का सिंहासन और करूब देखे थे, और जब आप स्वर्ग जाएंगे तो सबसे पहला दृश्य आपके सामने भी यही होगा, अन्यथा आप वहां ऐसे चकराएंगे कि मानो आपने अपना गृह कार्य नहीं किया। अतः हमें इस संसार को त्यागने के बाद स्वर्ग में वास्तविक और अनंत संसार के आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रतीक्षा में रहना है, क्योंकि आज की परिस्थितियों को और युद्धों आदि को देखते हुए हम नहीं जानते कि कब हमें पृथ्वी त्यागना पड़ जाए। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैं प्रभु को जानता हूं और बाइबल को भी, जो परमेश्वर ने हमें बहुत पहले ही दे दी थी। अतः मसीह होने के कारण जागते रहो और प्रभु पर आंखें लगाए रहो, क्योंकि हमारा उद्धार अत्यधिक निकट है। प्रभु आपके साथ हो और आपको आशीष दे, वे आपको थामे रहें। प्रभु आपको सामर्थ प्रदान करें, क्योंकि बुरे दिन बढ़ते जाते हैं। मनुष्य के भोग विलास के कारण संकटकालीन समय आ गया है। परमेश्वर आपके जीवन को मसीह में दृढ़ करें। आपका विश्वास परमेश्वर की बातों में एवं आत्मिक बातों में, आपकी भक्ति और उसके प्रति आपका प्रेम बढ़ता जाए, यीशु के नाम में।